ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्ताम् तदा लक्षोऽसति बहिः स्मयमानविक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिम् पदा नखमणिश्रिया वाच ललितां वाचां निरुध्याश्रुकलां शनैः। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुताम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। पति को सा वह देवहूति प्रव्रजिष्यन्तं घर छोड़कर जाने के लिए तैयार। तदा उस समय अलक्ष्य समझकर उषति अत्यंत सुंदरी देवहूति वही ही बाहर से स्मय माना मुस्कुरा रही थी, परंतु विक्लवेना बिहवल हृदयेना हृदय से विदुयता दुखी हृदय से। प्रातःकालीन बैठक में कथा हुई थी कि देवहूति को श्री कर्दम जी ने दुर्लभ भोग दिया जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। अंत में यह वर्णन हुआ कि कर्दम जी को 9 पुत्रियां प्राप्त हुई देवहूति के गर्भ से। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्दम जी अब गृह का त्याग कर वन में जाने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रव्रजिष्यन्तम् परिव्रजन करना चाहते थे, विरक्त होकर घर गृहस्थी से और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहते थे। पतिं प्रव्रजिष्यन्तम् अपने पति को इस तरह से परिव्रजन करने के लिए देख करके देवहूति बहुत दुखित हुई। यद्यपि बाहर से मुस्कुरा रही थी वही स्मय माना, लेकिन विक्लवेना हृदयेना विदुयता, इसका हृदय बहुत विह्वल था, विकल था, विदुयता बहुत दुखी, मन में बहुत दुख अनुभव कर रही थी। इतने महान पति का वियोग हो जाएगा, इस विचार से वो बहुत दुखी हो गई। यद्यपि देवहूति के पास अपार धन था, संपत्ति थी, वह अद्भुत भवन था, कहीं भी आ जा सकता था विमान, परंतु सबके बाद एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे उत्कृष्ट धन है पति। पति के बिना उसके जीवन की कोई शोभा नहीं है। सीता जी ने कहा है भगवान राम से रामायण में, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर प्राण के बिना मृतक कहा जाता है और पानी के बिना नदी हो सुनसान लगती है, इस तरह से बिना पति के स्त्री होती है। कितने वर्षों तक कर्दम जी साथ रहे और जब ही नौ बच्चियां हुई तो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। यह धर्म है। ठीक है, संबंध है पति पत्नी का, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है, दायित्व है किसी जीव पर, वो है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है। उसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, और सब संबंध क्षणिक हैं, कुछ खास समय के लिए हैं। लेकिन भगवान से प्रेम करना आत्मा का सहज कर्तव्य है, सहज स्वरूप है, और वह वही सत्य है। तो उस सत्य धर्म के लिए असत्य धर्मों को, कर्तव्यों को छोड़ा जाता है। कर्दम जी इस प्रकार तैयार हो गए। उनके इस निश्चय से देवहूति बहुत दुखी हो गई। एक दिन पति के सामने वह दुखी हृदय से कुछ कहने लगी। उस समय वह अपने नख से भूमि कुरेद रही थी। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, शोक के समय वो अपने पदनख से भूमि को कुरेदती हैं। यह उनके दुरंत चिंता का लक्षण है, ये बहुत दुख में है। श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, जिस समय श्री गोपीजन भगवान कृष्ण के सामने आई थी रास लीला के लिए, उस समय भगवान ने कह दिया कि तुम लोग घर जाओ, अपने पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, स्वजनों की देखरेख करो, अर्थात ये कह दिया कि तुम लोग लौट जाओ। तब गोपियों की ऐसी दशा हुई थी तो उस समय भी वे अपने नख से धरती कुरेद रही थी, नीचे देख रही थी, अधोमुख अपने नख से, जिसकी शोभा मणि के समान थी, मोती के समान चमक रहे थे नख, ऐसे नख से धरती कुरेदने लगी। अब धरती कुरेदते हुए उसने अपने पति से इस प्रकार कहा। उस समय उसके आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, परंतु अपने आंसुओं को उसने रोक लिया। अपने दुख को बहुत प्रकट नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कर्दम जी स्वयं ही अपना कर्तव्य समझ करके रुक जाए। उसकी इच्छा थी कि वे रुके कुछ काल तक घर पर, बाद में संन्यास ले लेंगे, बाद में वन में चले जाएंगे। तो उसने अपने आंसुओं को निरुद्ध अश्रु कलम समय ही धीरे से नेत्रों में ही रोक लिया। सब समय आंसुओं को प्रकट नहीं होने देना चाहिए। ऐसे स्त्रियों का स्वभाव होता है, लगता है कि उनके हाथ में आंसू रहता है, जब चाहे तब धड़का देती, जहां रोना चाहे वो रो देती। ऐसा देखा गया है, पहले से कोई सूचना नहीं है, पहले से कोई ऐसा फीलिंग भी नहीं। अगर कोई बाजार में भी उनकी मां मिल गई या बहन मिल गई तो वहीं पर रोना चाहिए। रोना स्वाभाविक है स्त्री के लिए, लेकिन शास्त्र शिक्षा देता है कि सब समय सब जगह नहीं रोना चाहिए। देवहूति को रुलाई आ रही थी, परंतु उसने गंभीरता से अपने आंसुओं को निरुद्ध कर लिया, रोक लिया, और इस प्रकार अपने पति से कहने लगी। देवहूति रुआच सर्वं तद् भगवान् मह्यं उपोवाह प्रतिश्रुतं अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हे भगवान, हे सर्वसमर्थ हमारे पति देव, मेरे लिए आपने जो भी प्रतिश्रुति दिया था, आपने जो भी प्रतिज्ञा किया था, उस सब पूरा कर दिया। आपने सर्वप्रथम ये कहा था कि प्रिय तुम मांगो और मैंने भगवान की भक्ति की है, तपस्या की, उपासना की, इस बल से मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हैं और उनमें तुम्हारा सहज अधिकार है, तुम देखो भोगों को। तो आपने हमें दिखाया, दिव्य दृष्टि दिया, हमारा देह परम सुंदर किया और हमें पूरे ब्रह्मांड में आपने भ्रमण कराया, सब सुख दिया। इस विषय में मेरे तरफ से आप पर कोई उलाहना नहीं है। सर्वम तद भगवान महिम उपोवाह प्रतिश्रुतम, आपने जो भी प्रतिश्रुति दिया सब उपोवाह, आपने निर्वाह किया पूरा पूरा, हमको सब कुछ दिया। अथापि फिर भी मैं कुछ और मांग रही हूं। अथापि में प्रपन्ना या अभयम दातुम अर्हसि, आप हमको सब कुछ दिए, इस विषय में कोई शिकायत नहीं है, जो दूसरे पति कभी कल्पना भी नहीं कर सकते देने के लिए, वो सब कुछ आपने हमको दिया, सब सुख दिया। पर आपके चरणों में एक भीख मांगती हूं, मुझे संसार बंधन से भी मुक्त कीजिए, मेरा भय दूर कीजिए, मैं तो भय में ही रह गई। वास्तव में प्रत्येक जीव के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, उसे अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होनी चाहिए, भगवान से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। और भगवान से तभी जीव प्रेम कर सकता है जब भगवान के विषय में प्रचुर मात्रा में वो सुनेगा उनके गुणों का कथन। और यही भगवत भक्ति, भगवान का श्रवण कीर्तन, व्यक्ति को इस माया जगत से पार करके भगवान के चरणों में ला देता है, जीव अभय हो जाता है। भय क्या है? भय वास्तव में जन्म मरण का भय। भागवत में बार बार कहा गया भय का अर्थ मृत्यु। डरती है रूह यारों और जी भी कांपता है, मरने का नाम मतलब मरना बुरी बला है, और सब हो जाए लेकिन मरने का नाम नहीं लो, ये बहुत खराब है, भय है। और इस भय से सारा संसार भरा हुआ है, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। आज घर छूट जाएगा, स्वजन छूट जाएंगे, धन छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, देह भी यहीं रह जाएगा, जाना पड़ेगा, कितना बड़ा भय है। और कहां जन्म होगा, किस स्थिति में जाएंगे, पहले जमराज के घर हो करके वहां जो पिटाई होगी, उसके बाद फिर अधम जोनियों में जन्म, ये बहुत बड़ा भय है जीव के लिए। देवहूति जी कहती हैं कि आपने सब कुछ हमें दिया परंतु मुझे अभय नहीं दिया। दो तरह का भय है देवहूति को, एक तो पति के अभाव में नौ नौ बच्चियों का विवाह करना, यह एक उसे यहां भय का अर्थ है दुख, यह दुख है, कहां कहां इनके लिए योग्य वर का परिचय चुनाव करेगी, कहां जाएगी, स्त्री कैसे जा सकती है कहीं देखने के लिए, और बच्चियों के विवाह में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम। पहले हमने देखा है लोग वर की खोज करते थे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव चले गए, संबंधी के संबंधी ऐसे ऐसे रिलेशन बैठाते हैं जाते थे, और अपने परिश्रम का मीटर क्या बताते थे, कितना परिश्रम किए वर खोजने में, तो उसको बताते थे हमको वर खोजने में इतने जूते टूट गए, जिसका अर्थ है कि सवारी की उतनी व्यवस्था नहीं थी, पैदल जाते थे खोजते थे, यही मापदंड था कि कितना जूता टूट गया घूमते घूमते। अब तो रिक्शे हो गए, बसें हो गई, ट्रेन हो गई, सब कुछ हो गया, तो लोग अब कम जूता तोड़ पाते हैं, लेकिन पहले का स्टैंडर्ड था इस तरह से। अभी भी बच्चियों के विवाह में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, एक तो ये सोचना है कि कौन लड़का मिलेगा, कैसे स्वभाव का, हमारी लड़की को कन्या को जीवन भर उसके साथ रहना है, तो ये सब क्वालिफिकेशन देखना, कूल सील स्वभाव सब देखना, और सबके बाद बैठाना कि हाँ ये लड़का ठीक है, ये बहुत कठिन काम है। लड़के वाले केवल ठुकराते हैं, अभी नहीं करना है, अभी पढ़ाई हो रही है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको कोई गरज नहीं होती है ना। देखे इस दशा में मान लीजिए पति चला जाए वन में, सन्यासी हो जाए, तो पत्नी क्या करेगी? वो बेचारी दीनहीन ऐसे ही थी, धन होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो यह एक दैन्य था उसके सामने, और दूसरा दैन्य था जन्म मरण की समस्या, संसार बंधन। इन दोनों दैन्य से मुक्त करने के लिए कह रही हैं। अथापि मैं प्रपन्नाया अभयम दातुम अर्हसि। प्रपन्नाया, प्रपन्ना का अर्थ होता है जो शरणागता है, शरण में है। किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने अधीनस्थ व्यक्ति की उस सब तरह से भलाई करे, और सबसे बड़ी भलाई है उसके बंधन को दूर करना, संसार बंधन को, उसे मुक्त कर देना। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, गुरुर न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सास्यात, दैवम न तत्स्यात, और कैसे शुरू में नमो चेद या पतिम न सस्यात, दैवम न तत्स्यात, नमो चेद या समुपेत मृत्यु। समुपेत मृत्यु, प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त है, मृत्यु के पंजे में है। तो ऐसे मृत्यु के अधीन रहने वाले अपने आश्रित को यदि कोई गुरु मुक्त नहीं किया तो गुरु गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात, वह गुरु गुरु हो ही नहीं सकता है, उसकी में कोई योग्यता नहीं है यदि वो शिष्य को संसार बंधन से मुक्त नहीं किया। गुरु न सस्यात, स्वजनों न सस्यात, और कोई भी व्यक्ति स्वजन नाम का बन ही नहीं सकता है। यह कहे कि मैं इसका काका हूं, मामा हूं, ये हूं, फूफा हूं, ऐसा हूं, ऐसा क्या करे? जब अपने अधीनस्थ को मृत्यु के जाल से मुक्त नहीं कर सकते तो तुम्हें ये सब टाइटल लेने का कोई अधिकार नहीं। स्वजनों न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को भगवान विष्णु की शरण में न भेजे और उसका जन्म मरण न मिटा दे। श्रील प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि उस व्यक्ति को जो स्वयं मुक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, उसको विवाह करने का कोई राइट नहीं, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करेगा तो पुत्र को क्या सिखाना चाहिए उसको स्वयं ही पता नहीं है। केवल पुत्र उत्पन्न करना सीखे और पुत्र को हरे कृष्ण मंत्र जपना न सिखावे तो वह पिता पिता होने का अधिकार नहीं रखते। तो क्या किया जाए? तो सरकार ऐसे ही पड़ी हुई है कि बच्चा मत उत्पन्न करो। लेकिन कहने का आशय यह है कि स्वयं ही भक्त बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी भक्ति का अभ्यास कराना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। जननी न सास्यात, वह जन्म देने वाली मां मां नहीं कही जा सकती, जननी नहीं कही जा सकती जो अपने संतान को भगवान की भक्ति सिखा करके जन्म मृत्यु से मुक्त न कर दे। और पति न सस्यात, वह व्यक्ति पति नहीं बन सकता। पति का अर्थ है हस्बैंड अथवा राजा स्वामी, वो पति पति नहीं हो सकता है जो अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में न लगावे। न सस्यात, भगवान आर्डर जैसे करे वो है ही नहीं। वास्तविक जो योग्यता है पति में या राजा में, गुरु में, माता पिता में, वह यह है कि सबको भगवान, अपने अधीनस्थ को भगवान विष्णु की भक्ति में लगावे जिससे उसका जन्म मरण मिट जाए। ये सबसे बड़ा भय है वास्तव में। ये संसार जो अनेक संबंधों में बांधा गया है तो हमेशा इसके लिए कि जो सुपीरियर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वे अपने कनिष्ठ को सर्वदा विष्णु के शरण में भेजें, भगवान की तरफ भेजें, वो अवसर दें, ऐसी शिक्षा दें कि लोग श्री जगन्नाथ जी को समझें, भगवान को समझें। अन्यथा इस तरह के सुपीरियर पद को लेने का अधिकार नहीं। गुरुर न सस्यात, आज के युग में बहुत से गुरु हैं, और गुरु क्या भगवान की भक्ति को सिखाएंगे, वो खुद ही भगवान बने हुए अपनी भक्ति सिखा देते हैं। उनका फोटो घर में पड़ा रहता है, भगवान तो निराकार हो जाते हैं, भगवान का कोई फोटो ही नहीं रहता, देखे हैं ना। तो गुरु बने हुए हैं भगवान को और अंतर्हित करने के लिए, भगाने के लिए, पीठ के पीछे करके भगवान को छिपा देते हैं, सामने कहते हैं, ऐसे प्रवचन करते हैं, भगवान तो निराकार है और यदि तुम्हें भगवान को समझना है तो मैं प्रत्यक्ष आ गया। देखो मैं प्रत्यक्ष हूं। एक बार की सत्य घटना है, एक पाखंडी गुरु को एक शिष्य पूछा, सामने पूछा, गुरु जी आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो गुरु जी कहते हैं तुमको कैसा लगता है, व्हाट इज योर रियलाइजेशन, तुम्हारा क्या विचार है, तुम इसको क्या सोचते हो? तो वो कहा कि आप तो साक्षात परब्रह्म लग रहे हैं, साक्षात परमात्मा परब्रह्म लग रहे हैं हमारे रियलाइजेशन में। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन झूठा हो ही नहीं सकता, तुम अपने पर इतना विश्वास रखो, तुम झूठा सोच ही नहीं सकते। वाह रे गुरु और शिष्य, कितनी अच्छी बात उनको लगी होगी कि मेरा रियलाइजेशन है कि आप साक्षात परब्रह्म हैं, और परब्रह्म को हो सकता है कफ भी हो और दांत का दर्द होने लगे तो डेंटिस्ट के पास जाकर हाय हुई करने लगते, ऐसे परब्रह्म घूमते रहते हैं। डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, पेट में कैंसर भी है, फिर भी परब्रह्म हो गए। तो जमराज जी बताएंगे तुम्हारी परब्रह्मता, खूब अच्छी तरह से ढिलाई करेंगे। ऐसे लोगों को बहुत पिटवाते हैं, नरकों में बहुत डालते हैं। लिखा गया पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम में, जो आर्य पथ को, भगवत पथ को, वैष्णव पथ को छोड़कर के और पाखंड पथ में फंसते हैं, उनके लिए स्पेशल एक नरक है। इसमें ध्यान नहीं आ रहा है उस नरक का क्या नाम है, लेकिन स्पेशल उसका नाम है और उसमें स्पेशल दुख की व्यवस्था है। सारा जितना भी इनकन्वीनियंसेज है सब वहां भरा हुआ है, सारी असुविधा। इस समय तो चेला बना लो, पूजा कर लो, लेकिन जमराज के दूत जो पूजा करेंगे तब पता चलेगा। अभी भी समय है, भगवान का नाम जप करके मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह कोई भी व्यक्ति जो उच्चतर पद पर है, गुरु, माता, पिता, बड़ा भाई, मामा, फूफा या राजा, पति, इनके पद की सार्थकता इसी में है कि अपने अधीनस्थ जनों को भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं और इस तरह से मृत्यु से मुक्त करें, उनको जन्म मरण से मुक्त करें। देवहूति जी यही आग्रह कर रही थी, हे पतिदेव, आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे अभय नहीं दिया, मुझे भगवान की भक्ति आपने नहीं दिया, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया मेरे साथ। और दूसरी समस्या ये है, ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यः पतयः समः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। आपकी ये नौ पुत्रियां घर में हैं, इनके लिए योग्य वर का अन्वेषण करना पड़ेगा, यह करके जाइए, नौ पुत्रियों का विवाह करके जाइए। तुभ्यम दुहित्री भी, कितना बोलने में शालीनता है, इस तरह से बोलना चाहिए, आपकी पुत्रियां, ऐसा तो होती जी नहीं कर रही, मेरी बेटियां, व्यवहार में भी ऐसे बोलना चाहिए, स्त्री पुरुष की भाषा होनी चाहिए। अगर पुत्र के लिए कुछ कहना है तो पत्नी यही कहेगी, आपका पुत्र, आपका पुत्र। और यदि पति कभी बोलेगा तो वो कहेगा तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र। इस तरह से उनके संबंध को बढ़ाना चाहिए। एक बार सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछ रही, जब सीता जी अपने पति के साथ भगवान राम के साथ वन में जा रही थी, तो भगवान का नियम था कि वे गांव में नहीं प्रवेश करते थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास वन में ही रहते थे, तो गांव में गली में पार भी नहीं करते थे। तो कोई गांव पड़ता था तो उसके बगल से किनारे से निकलते थे। एक दिन की बात थी, एक गांव से किनारे निकल रहे थे, दोपहर का समय था, सीता जी थक गई थी। एक वट वृक्ष के नीचे वे बैठे तीनों, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी। तो उनको देखने के लिए गांव के सारे लोग आ गए, वट वृक्ष के नीचे भर गए। अद्भुत सौंदर्य है भगवान में, सब सारे सद्गुणों के वे अनंत आश्रय हैं। तो देख देख करके लोग चकित हो गए, इतनी सुंदर वन के तरफ जा रहे हैं। तो बहुत जिज्ञासा हुई, स्त्रियां सीता जी के पास बैठी थीं और पुरुष भगवान श्री राम के पास। तो बातचीत होने लगे, स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से कि हे सखी, लगता है आप राजकुमारी हैं, किसी राजा के पुत्री हैं, थोड़ा वन में क्यों जा रही हैं, और ये दोनों आपके कौन लगते हैं? तो ये समझ गई थी, फिर भी कहलवाना चाहती थी कि सांवले आपके कौन लगते हैं, गोरे कौन लगते हैं। सांवले मतलब भगवान श्री राम और गोरे लक्ष्मण जी। सीता जी कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इस तरह से बोल रहे हैं, ये जो आप देख रही हैं, जिनका बहुत ही सहज सुंदर स्वभाव है और शरीर से जो गोरे हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने पति से उसका संबंध बता रही हैं कि हमारे पति के भाई हैं और वो भी छोटे देवर हैं। इसका अर्थ है कि बड़े देवर भरत जी हैं। इस भाव से सीता जी बोल रही हैं, लघु देवर मोरे कह गई है, इसका अर्थ है कि बड़े देवर भरत जी हैं और ये हमारे छोटे देवर हैं। तो देवर कहने का मतलब हमारे पति के भाई, इस तरह से बोल रही। तो पति के साथ उनके संबंध को दृढ़ करती है। वैदिक संस्कृति की विशेषता रही है, कभी किसी का परिचय देना हो तो ऐसे देना चाहिए, अपने साथ जो संबंध है उसको प्राथमिकता न दे करके पुत्र के साथ, पिता के साथ ऐसे उसका संबंध बढ़ाना चाहिए। किसी से आजकल की स्त्री से पूछा जाए, जो बहुत अपने को पढ़ी लिखी समझती है शहर की, तो पूछे ये कौन है, वो मेरे मिस्टर हैं। ऐसे बात, और किसी के कुछ है कि नहीं पता भी नहीं लगने देगी, पता नहीं लगने देगी। और वो भी स्त्रैण व्यक्ति जब अपना परिचय देगा तो कहेगा मैं उसका मिस्टर हूं, चाहे जो भी, ये नहीं कहेगा कि मैं इस पिताजी का पुत्र हूं, मेरे ये भाई हैं, मेरा गांव यहां है, ये है वो है। बस अपने वाइफ से ही परिचय देगा, क्योंकि उसी के कारण लगता है कि बहुत यशस्वी अपने को मानता है। ये सब विधियां हैं। तो देवहूति जी कह रही हैं, तुभ्यम दुहित्र भी, आपकी दुहिताएं आपकी पुत्रियों के लिए वर खोजने चाहिए ना। विमृग्या पतय समह, समह का अर्थ है योग्य, योग्य वर खोजना चाहिए। तो आपकी पुत्रियां हैं तो आप खोजेंगे ना, ये सहज बात आ गई। देवती जी ये नहीं कह रहे कि मेरी बेटियां कैसे विवाही जाएंगी, आप चले जाएंगे, तो इतने से ही बहुत बात में अंतर हो जाता है। ये मेरा मेरी अपने लिए नहीं करना चाहिए, दूसरे स्वजनों के साथ ज्यादा संबंध जोड़ने चाहिए। आपकी पुत्रिया चली जाए, विवाह हो जाए, इनका इनको योग्य वर मिले, ये काम करना है। और दूसरी बात है कश्चिन श्याम में विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम, और जब आप वन में चले जाएंगे तो कोई होना चाहिए, अर्थात हमें एक पुत्र चाहिए जो हमारा शोक दूर करे। कश्चित स्यात् में विशोकाय, मेरा शोक दूर करे, मैं जब आपके विरह में रहूंगी तो आपका प्रतिनिधि मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। जो स्त्री पुत्र वाली है तो पति यदि सन्यासी हो जाए या किसी तरह से उनका वियोग भी हो जाए तो कम से कम इतना संतोष रहता है कि पति ही मेरे साथ पुत्र के रूप में है। स्त्री को बहुत बड़ा बहुत बड़ी सांत्वना मिलती है, एक बहुत बड़ा शोक है यदि पति छोड़ करके चला जाए पत्नी को, और पत्नी के पास पति से उत्पन्न हुआ कोई प्रतिनिधि पति का नहीं है, बच्चा नहीं है, तो बड़ा दुख का अनुभव करती है, असहाय जीवन अनुभव करती है। और वो बच्चा बड़ा होने पर मां की देखरेख करता है, पालन पोषण करता है, रक्षा करता है सब तरह से। मनु महाराज ने कहा भी है मनु संहिता में कि पति यदि सन्यासी हो जाए, घर छोड़ दे, तो अपने पुत्रों के देखरेख में स्त्री को रहना चाहिए, वो पालन करते हैं, पोषण करते हैं, अन्यथा स्त्री का जीवन वास्तव में असहाय जीवन है। कोई भी लंपट व्यक्ति उन पर दृष्टि डालता है, उन्हें भोगने की चेष्टा करता है। यदि पति नहीं है तो पुत्र रहे जो अपने मां का पालन करें ठीक से। और विशोकाय, मेरा शोक दूर करने वाला चाहिए। वास्तविक शोक का अर्थ है मैं जन्म मरण में हूं, मैं दुख में हूं, संसार ज्वाला में हूं, तो मुझे ज्ञानोपदेश करके मुझे मुक्त करने वाला कोई ब्रह्मवेत्ता पुत्र चाहिए, हमको डिवोटी पुत्र चाहिए, भक्त चाहिए, यह आग्रह कर रहे हैं। हमें पुत्र चाहिए जो पुत्र भगवान कृष्ण की कथा सुनावे, ज्ञानोपदेश करे, भगवान के गुणों का वर्णन करे, जिससे मेरा शोक दूर हो जाए और आपके विरह का शोक भी इस तरह से दूर होता रहे। मैं उस पुत्र के साथ रहूंगी तो उसको देख करके हमारा शोक दूर होगा कि आप मेरे साथ। पुत्रियां तो होती हैं तो वो तो चली जाती हैं घर छोड़ करके, भगवान ने ऐसी विधि बनाई है, जन्म कहीं और होता है और रहना पड़ता है उनको दूसरी जगह। माता पिता के यहां जन्म होता है, पढ़ाई लिखाई करती है और अंत में पति को सुपुर्द कर दी जाती है। माता पिता स्वयं ही वर ढूंढ करके दे देते हैं, कन्यादान करते हैं, तो पुत्रियां तो घर पर रहेंगी नहीं। कभी कभी माता पिता से मिलने आती हैं किसी विशेष उत्सव में या किसी विशेष प्रयोजन में, लेकिन उन्हें तो रहना है अपने पति के घर, ये स्वाभाविक। तो फिर घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी, ये बहुत दुख की बात है। तो हमें पुत्र चाहिए, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वह भी ब्रह्मवेत्ता पुत्र चाहिए जो माया के कार्यों में न उलझा हो, माया जगत से परे भगवान कृष्ण को जो पूर्णतः समझता है और जो ब्रह्म में निष्ठ है, ऐसा पुत्र चाहिए मुझे। और देहूति का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ब्रह्मनिष्ठ क्या साक्षात ब्रह्म ही पुत्र बनेगा, बहुत बड़ा सौभाग्य उसको, पति का आशीर्वाद था उसे। लेकिन अभी वो बहुत विकल है, त्वयि प्रव्रजते वनम, वन में प्रव्रजन करने के बाद मेरा शोक दूर करने वाला मुझे चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जीवन में बहुत आवश्यक है ब्रह्मज्ञानी अर्थात भगवत भक्त व्यक्ति का संग मिले, भगवत भक्त का संग बहुत आवश्यक। कश्चित श्याम में विशोकाय, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त है अपने पति से तो पति का यदि निधन भी हो जाए तो वह स्त्री विधवा नहीं मानी जाती, क्योंकि पति ही पुत्र के रूप में उपस्थित है, वो जो उसके शोक को दूर करता है। लौकिक पुत्र भी, फिर भगवत भक्त पुत्र हो जाए तब तो कहना ही क्या, तो उसका शोक दूर होता है। इस पर कर्दम जी ने कहा, मान लीजिए ऐसा कहा होगा कि अभी भोगों को भोगो और ब्रह्म जिज्ञासा से क्या तात्पर्य है, क्यों भक्ति की बात करते हो, ब्रह्म विद्या से क्या प्रयोजन है, इतना उत्कृष्ट भोग है इसको भोगो, तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा। तब देहूति जी कहती है, एतावतालम कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, इतने काल तक मैं भोग की खाई पी आपके साथ रही, इंद्रियों के प्रसंग में, इंद्रियों की आसक्ति में, इंद्रियों को भोग देने में हमारा इतना समय चला गया, यही काफी है, पर्याप्त है, पर्याप्त है, अब मैं भोगों को नहीं भोगना चाहती। एतावता कालेन अलम, अलम निवारण है, अलम का अर्थ है निवारण, बहुत समय बीत गया, 100 वर्ष तक पूरा बीता है इंद्रियों के अर्थों में। इंद्रियों के अर्थ क्या है, जिसको विषय कहते हैं, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का गंध, त्वग इंद्रिय का विषय है स्पर्श और रसना, जिह्वा का विषय है रस टेस्ट, इनको मैं 100 वर्ष तक भोगी हूं, और सबसे उत्कृष्ट भोग, सबसे सुंदर रूप देखना, खाना पीना और जो भी है भोग स्पर्श इंद्रिय के, इन सबको मैंने पूरी तरह से भोगा है, इसमें बहुत समय मैंने बिता दिया, अब हद हो गया, सीमा हो गई, अब मैं नहीं करना चाहती हूं, मुझे नहीं चाहिए इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों का भोग बहुत अधिक हो गया, हाय हाय, जहां नहीं लगना चाहिए वहां मैं लगी रही, और जिसके साथ होना चाहिए, जिसके संपर्क में होना चाहिए, ऐसे परमात्मा को, भगवान कृष्ण को मैंने बिल्कुल तिरस्कृत किया, उनकी भक्ति नहीं किया। परित्यक्त परात्मना, परात्मा परब्रह्म भगवान कृष्ण का मैंने अनादर किया, होना चाहिए था यह कि मैं उनके चरणों में रहती, उनके रूप गुण आदि का स्मरण करती, उनकी भक्ति करती, इसके लिए जीवन था, लेकिन उनको मैंने परित्यक्त विस्मृत कर दिया, उनकी भक्ति नहीं कर रही थी, और इंद्रियार्थ प्रसंगे न, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में ही मेरा इतना समय चला गया, हाय हाय, अब मैं भोग नहीं चाहती हूं, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं वैराग्य चाहती हूं, यह है देहूति की कामना। और बहुत शोकपूर्ण उद्गार व्यक्त कर रही है कि मैंने भगवान की उपेक्षा किया। इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व भगवान को देना चाहिए, क्योंकि वही दुनिया बनाए हैं, सब कुछ खाने पीने रहने की व्यवस्था किए हैं, ये देह भी दिए हैं और देह से भोगे जाने वाली वस्तुएं भी भगवान दिए हैं, उनके उपकार को मान करके भी उनका स्मरण करना चाहिए और अपना स्वरूप समझकर, क्योंकि उनके संग होने से ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। देहूति का उद्गार है कि इंद्रियार्थ प्रसंगे न परित्यक्त परात्मन, इंद्रियों के विषयों में मैं लगी रही और भगवान को मैंने छोड़ दिया, तिरस्कृत किया, भगवान का नाम न लेना, भगवान का दर्शन न करना, आरती न करना, वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा तिरस्कार है, ये उपेक्षा है। मनुष्य वैसे ही खाता है, पीता है, सोता है, स्त्री संग करता है, सब करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ईश्वर का अपमान हो रहा है। इस तरह से भगवान की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जो जीवन का सबसे प्रधान कार्य है उस पर कोई ध्यान नहीं, और जो बिल्कुल फालतू है, आहार निद्रा भय मैथुनम था, उसमें लगा रहता है, जिस कार्य से उसे सख्त बचना चाहिए उस कार्य में लगा रहता है, और जिस कार्य को रच रच के करना चाहिए उसके निकट नहीं जाता। कितने दुख की बात है, भगवान के अनेक मंदिर हैं इस संसार में, लेकिन कुछ लोग मंदिर में भी नहीं जाते, रोज दुकान में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे और गलत खान पान रहेगा, गलत लोगों के साथ बातचीत सब, लेकिन भक्तों के साथ कभी उठना बैठना नहीं, भगवान के मंदिर में उनका दर्शन नहीं, यह बहुत शोक की बात है। वास्तव में देवहूति यही बात कह रही है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं विषय भोग को नहीं चाहती हूं। इतना स्पष्ट कहना, मुझे विषय भोग नहीं चाहिए, अब मुझे भगवान का आदर करना है, भगवान को हमें समझना है, मैंने भगवान का जो तिरस्कार किया, उनकी विस्मृति किया, हमारे जीवन में बहुत बड़ा शोक। तो मुख्य रूप से देवहूति भगवान के बारे में सुनना चाहती है, सुनने से ही भगवान का संग होता है, ये हृदय में प्रवेश करते हैं। इतना समय बीत गया, यही बहुत बड़े दुख की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को वास्तव में इसी विचार में रहना चाहिए, हमारा इतना दिन जो समय बीता भगवत विस्मृति में, यह बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो भगवत विस्मृति और इंद्रियार्थ प्रसंग, इंद्रियों के विषयों में प्रसंग, प्रकृष्ट संग, आसक्ति, लोग लगे हुए हैं कहां खाने को अच्छा मिलेगा, पहनने को अच्छा मिलेगा, सुनने को अच्छा मिलेगा, देखने को मिलेगा, इसी के लिए पैसा अर्जन करना, कमाना, मेहनत करना, ये सारा मेहनत फॉर नथिंग, कुछ के लिए कोई लाभ नहीं, व्यर्थ हो जाता, अंत में शरीर छोड़ना पड़ता है। तो यह शरीर मिला है जीव को भगवान की भक्ति के लिए, जिह्वा से भगवान का नाम बोलना, आंख से दर्शन करना, कान से सुनना, हाथ से मंदिर मार्जन आदि करना, पैर से भगवान के धाम की यात्रा करना। तो नियम होना चाहिए कि अब हम खाएंगे तो केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद खाएंगे, उनको भोग लगाकर खाएंगे, और कोई भी नॉन भेज वगैरह तो देखेंगे भी नहीं, इसे व्यर्थ है। वास्तव क्या सुख मिलेगा, और इंद्रियार्थ स्त्री संग आदि में जीव को केवल क्लेश ही हाथ लगता है, कोई सुख नहीं है। वास्तव में मनुष्य का आनंद भगवत भजन है, और एक कुत्ते बिल्ली का आनंद है इंद्रियार्थ। कुत्ते बिल्ली भी इतना सुख लेते हैं, मनुष्य का अधिकार है ब्रह्म सुख लेने का, स्पिरिचुअल आनंद लेने का, उत्कृष्ट आनंद। तो जो उत्कृष्ट आनंद है उसके तरफ ध्यान भी नहीं गया, और जो बिल्कुल निकृष्ट नारकीय सुख है उसी में मेरा समय चला गया, अब मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद एक जुक्ति से करदम जी को कह रही है कि पतिदेव मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मेरी बहुत भूल थी, इंद्रियार्थे सुसज्जनतया प्रसंगस्तय में कृतः, मैं आप जैसे महान भक्त के साथ जो इस तरह से रही पत्नी बन करके, पर मेरा लक्ष्य कभी नहीं था कि मैं भक्ति करूं, इंद्रियार्थे सुसज्जनतया, मैं शुरू से ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त थी। तो आप इतने धनी, इतने महान, इतने यशस्वी हैं, और आपके योग बल को देखा मैंने, तो मेरे मन में आपसे लेने की इच्छा हुई, मुझे ये भोग मिले, संसार में मैं भी भ्रमण करूं, देवताओं को जो सुख मिला है वो मुझे मिले, यह मिले वह मिले, केवल भौतिक सुख के लिए मैंने आपका संग किया, ऐसे मैंने सेवा की, ये बात कह रही है। लेकिन मेरे मन में हमेशा रहा कि हमारे पति देव परम समर्थ हैं, हमको ये भोग देंगे, ये भोग देंगे, ये भोग देंगे। तो भोगों की लालसा रह करके मैंने आपका संग किया, आपके महान स्वभाव को, परम भावम अजानन्त्य परम भावम, मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाई। परम भावम क्या है कि आप भोगों में बिल्कुल आसक्त नहीं थे, मैंने देख लिया है इतने वर्षों में, आपकी कोई रुचि नहीं थी भोगों में, आपका भाव भगवान कृष्ण के चरण कमल में रहा हमेशा, परंतु मैं उसको जान नहीं पाई। आज मैं समझ गई कि आप कितने निष्प्रिय हैं, कितने सुखी हैं, और भगवान की भक्ति से आप पूर्णतः तृप्त हैं। तो मैं आपके परम भाव को, आपके भक्त स्वभाव को मैं नहीं जानती थी, पर फिर भी मैंने आपका संग किया है, मैं आपकी धर्मपत्नी बनी हूं, आपके साथ रह रही हूं, तो तथापि अस्तु अभयाय में, तो मेरा कल्याण होना ही चाहिए, चाहे जिस भाव से मैं आपके साथ रही हूं। आप महान हैं, भगवान के भक्त हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो मेरा आपके गुणों से उद्धार होना ही चाहिए। मैंने बहुत बड़े व्यक्ति का संग किया है, महात्मा का संग किया है, किया है, मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं था, मैं भोगों को चाहती थी, लेकिन संग बहुत बड़े व्यक्ति का किया, महान पुरुष का संग किया, इस कारण से मेरा उद्धार होना ही चाहिए, वस्तु शक्ति से। जैसे कोई अग्नि को शीतल समझ करके छुए तो अग्नि तो जलाएगा ही, तो हमने अपना पति मान करके और भोगों को भोगने की लालसा से आपका संग किया, आपकी सेवा की, आपके साथ रही, तो आपका जो गुण है वो मुझ में आना चाहिए। यही वास्तव में बहुत युक्तिपूर्ण बात है, मेरा अवगुण आप में नहीं जाना चाहिए, और ये होता भी नहीं वास्तव में। बड़े लोग जो होते हैं वो छोटे के अवगुण से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, अपना गुण संचारित कर देते हैं, जैसे गंगा जी। गंगा जी में बहुत सी नदियां मिलती हैं, कर्मनाशा का जल भी गंगा जी में गिरता है, लेकिन गंगा जी दूषित नहीं होती है कर्मनाशा के जल से, कर्मनाशा के जल को भी अपने समान पावन बना देती है। कर्मनाश जल सुरसरी परई तही कह को अपनी तन कहई, रामचरितमानस में कहा गया। कर्मनाशा का जल जो त्रिशंकु के लार से बना हुआ है, बहुत अशुद्ध जल है, वह जब सुरसरी में गंगा जी में मिलता है तो गंगा जी के समान पावन माना जाता है। अरे कर्मनाशा की बात छोड़िए, कानपुर में, मुरादाबाद आदि शहरों में कितने गंदे जल नाले गिराए जाते हैं गंगा जी में, तो क्या वे गंगा जी को दूषित कर देते हैं? नहीं, गंगा जी उनको पावन कर देती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो गंगा जल को अपने माथे पर नहीं रखता है, पीता नहीं? क्या कोई कभी सोचा है कि इसमें बड़े बड़े शहरों के गटर गिरे हैं, नाले गिरे हैं, कभी कोई सोचा है? ये है गंगा जी का प्रभाव। गंगा जी को के आश्रय में कोई आया, शरण में आया, कितना गंदा नाला हो, गंगा जी अपनी महिमा से उसको पावन बना देती। यही बात देवहूति जी कह रही है, भले मेरा स्वभाव रहा छोटा, मैं भोग चाहिए, बहुत निकृष्ट चेतना मेरी थी, लेकिन मैंने आप जैसे महान भक्त का संग किया, इसलिए मेरा तो हित होना ही चाहिए आपके प्रभाव से। सूरदास जी ने एक पद गाया है, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, हे नाथ हे कृष्ण आप हमारे अवगुण को मत देखिए, मैं तो अवगुण की खान हूं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो उदाहरण देते हैं, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो। आप तो समदर्शी हैं, और इस तरह के उदाहरण देते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक लोहा है जो पूजा में रखा जाता है, डीटी किचन में, भगवान का प्रसाद बनाया जाता है, तो फल काटना, छीलना, बनाना, सब्जी बनाना, जो भी है, वो लोहा भगवान के पूजा गृह में रहता है, किचन में। और दूसरा वैसा ही ठीक लोहा घर बधिक परो, बधिक के व्याध के घर में रहता है, जो जीवों को काटता है, शरीर को काटता है, बेचता है, मारता है। दोनों लोहा है, एक भगवान के पूजा में रखा हुआ है और एक बधिक के घर में पड़ा हुआ है, लेकिन पारस पत्थर स्पर्श मणि यदि टच करे तो ये दुविधा नहीं करेगा कि ये कसाई का लोहा है, ये पशु काटता है, और ये भगवान का लोहा है, वो दोनों को सोना बना देगा, वो कभी ये विचार नहीं करते हैं। स्पर्श मणि जड़ मणि है इस जगत में, उसका ये प्रभाव है। तो फिर संत का और भगवान का प्रभाव तो कहना ही क्या। कभी विचार नहीं करता है स्पर्श मणि की, ये बहुत बकरा काटा है या मुर्गा मुर्गी काटा है लोहा, इसको सोना नहीं बनाएंगे, भगवत प्रसाद काटने वाले लोहे को सोना बनाएंगे, नहीं कभी नहीं सोचता। यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। और फिर कहते एक नदिया एक नार कहावत, गंदो नीर भरो, लेकिन जब मिलकर कैसे है सुरसरी नाम परो, गंदे जल बहते हैं गंगा जी में गिरते हैं, लेकिन गंगा जी का संग होते हैं सब गंगा हो गए, सारे गंदे जल गंगा जी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े लोगों का स्वभाव होता है, उनकी जो भगवान के चरण कमल में निष्ठा होती है उस कारण से अपने आश्रित को इस तरह से शुद्ध कर देते हैं, प्रभाव पड़ता है। देवती जी कहती हैं कि इंद्रियार्थेषु सज्जनतया प्रसंगस्तय मे कृतः, इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने से मैंने आपका संग किया है, ये आपके साथ मैं रह करके वही उद्देश्य रखी, खाना पीना भोग भोगना, लेकिन आप तो भोगों से अनासक्त हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति से भरे पड़े हैं, अतः आपके प्रभाव से मुझे अभय दान मिलेगा ही, मेरा कल्याण होगा। एक सिद्धांत बता रही है, संगो यह संस्कृत रहे तु रसत्सु विहितो धिया सएव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। यह सिद्धांत है कि यदि असत्सु, यदि कोई दूषित लोगों में संग करे, उनके साथ रहे, खान पान उठना बैठना करे, जो असत हैं, असत का अर्थ है जो भगवत विमुख है और पाप कर्म में रचे पचे हैं, यदि उनका कोई संग करे और अधिया अज्ञान में भी गलत लोगों का संग करे, तो वह संग जन्म मृत्यु का कारण हो जाता है। दुष्टों का संग करने से संसार बंधन बढ़ता है, दुख बढ़ता है, अनजान में भी संग करे तो सैव साधुषु कृतो, और वही आसक्ति वही संग यदि साधुओं के साथ किया जाए और अनजान में भी किया जाए तो निसंगत्वाय कल्पते, वह मुक्ति देने वाला हो ही जाता है, मोक्ष देने वाला होता है, भले साधु की महिमा कोई समझे या न समझे, पर उसको अच्छा लगता हो यदि साधु के साथ बैठना बात करना, उसमें आसक्ति हो तो वो निसंगत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है, उसका मन भगवान में लग जाता है। यह अपने आप सिद्धांत, एक बार कहा गया एक नीति श्लोक में कि देखो बड़े लोगों का संग करने से क्या क्या लाभ होता है, अगर छोटा सा कीड़ा पुष्प का संग करता है, फूल का संग करता है, तो एक दिन उस पुष्प की माला बनाई जाती है तो वह कीड़ा भगवान के गर्दन में चला जाता है, कंठ में चला जाता है, क्योंकि उसने फूल का संग किया और वह फूल भगवान को अर्पित किया गया श्री विग्रह को, तो भगवान के मस्तक पर भगवान के श्री विग्रह पर कीड़ा देखा जा सकता है। यद्यपि वह इस दृष्टि से संग नहीं किया कि मैं भगवान के कंठ तक पहुंच जाऊं श्री विग्रह तक पहुंच जाऊं, अनजान में संग किया पुष्प का और वह पुष्प के साथ भगवान के पास पहुंच जाता है। इसी तरह से साधु महात्मा का बड़े लोगों का संग करना चाहिए, अगर अनजान में उनकी महिमा न समझ करके जैसे तैसे भी कोई व्यक्ति संग करता है तो वो महत्पद को पाता ही है, भगवान में उसकी प्रीति होती है, संसार बंधन छूट जाता है। तो यह जुक्ति बता रहे देवहूति, मैंने आपका संग किया, आपकी सेवा किया, मैं आपके साथ रही, मैं आपकी महिमा नहीं जानती थी, उल्टे भोगों की कामना से आपके पास रही, परंतु फिर भी हमारा हित होगा ही। तो करगन जी कहते हैं कि तुम अपने लिए इतनी चिंता क्यों करती हो, इतना बड़ा उत्कृष्ट भोग भोगा, इतना सुंदर घर मिला जो ब्रह्मांड में किसी के पास ऐसा घर नहीं है, समस्त मणियों से बना हुआ, रत्नों से बना हुआ सारे सब कुछ है, तुम क्यों इतना दुख का अनुभव करती हो? तब देहूति जी कहती हैं, नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवा यही जीवन नपि मृतो ही सह। आप कहते हैं भोगों की बात, मैं जीवित ही मरी हुई हूं, क्यों कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कर्म करता है, न नेहजत कर्म धर्म आया, कुछ स्वाभाविक घर गृहस्थी के काम करता है और करता है, लेकिन वह कर्म यदि धर्म से उसको नहीं जोड़ता है तो वह धर्म, वह कर्म व्यर्थ है। धर्म से उसके कर्तव्य से जुड़ना चाहिए। कोई भी कमाने का, जैसे किसी के पास कोई जॉब है या दुकानदारी है, सर्विस है, स्वाभाविक कर्म कर रहा है परिवार के पोषण के लिए, अपने पोषण के लिए, लेकिन वह कर्म यदि उसको धर्म में नहीं लगाता है, जो शास्त्रों में उसके लिए कर्म कहा गया है उन कर्मों में यदि वो प्रेरित नहीं करता है तो वह कर्म बेकार है। उन धर्मों में प्रेरित नहीं करता है तो कर्म बेकार है। और न विरागाय कल्पते, वह कर्म धर्म में प्रेरित करके और धर्म का आचरण करके यदि विराग की प्राप्ति नहीं करता है, वैराग्य नहीं, अटैचमेंट में रह जाता है, अर्थात कोई भी धर्म का आचरण जो हो रहा है, पहली बात तो है कि साधारण कर्म यदि धर्म में नहीं प्रेरित करते हैं और वह धर्म यदि वैराग्य की तरफ उसको नहीं ले जाता है, केवल संसार के भोगों में ही आसक्त कर देता है, और जो वैराग्य संसार के काम धंधा आदि से छुटकारा या और सब वस्तुओं से छुटकारा, अनासक्ति, यदि तीर्थपद सेवा न, यदि तीर्थपद भगवान विष्णु की सेवा में प्रेरित नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है, जीवन नपि मृतो ही सह। जो कर्म दिन रात होते हैं सवेरे से शाम तक, इन कर्मों का फल होना चाहिए कि धर्म में रुचि हो। यह धर्म का अर्थ इतना ही है कि वेदों में जो व्यक्ति के लिए नियम बनाए गए, ऐसा करो, इस समय उठो, इस समय खाओ पियो, भगवान को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, इसको धर्म कहा गया है। यह वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इस तरह के धर्म है। तो ऐसा नहीं कि केवल कुत्ते जैसा खाए पिए व्यक्ति और न ठीक से नहाए, न देवताओं का आदर करे, न माता पिता की सेवा करे, और स्त्री न पति की सेवा करे, और न जो पुरुष है वो बच्चों की देखरेख करे ठीक से। शास्त्र के अनुसार जो क्रियाएं हैं उसको धर्म कहा गया है। तो कोई भी कर्म है व्यक्ति का धर्म में प्रेरित कर, धर्म के तरफ अभिमुख होना चाहिए और धर्म वैराग्य के तरफ अभिमुख करे, संसार के भोगों से आना सख्त होना छूटना, और वैराग्य अन्य इंगेजमेंट से छुड़ा करके व्यक्ति को तीर्थपाद की सेवा में नियुक्त करे, तब वैराग्य वैराग्य, नहीं तो वैराग्य की कोई कीमत नहीं। वैराग्य इसके लिए नहीं लिया जाता है कि कोई काम न करना पड़े, फ्री में भोजन मिले, ये तीर्थपाद भगवान विष्णु की सेवा के लिए वैराग्य लिया जाता है। भाई अब स्त्री में आसक्त नहीं है तो चलो भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, प्रचार करें, भगवान का नाम जप करें, मंदिर में सेवा करें, और कई तरह से सेवा होती है भगवान की, इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन होता है। तो सब कुछ मनुष्य, जिस मनुष्य का कर्म भगवान तीर्थपाद के, गंगा जी जिनके चरणों से निकली हैं, ऐसे प्रभु की सेवा में प्रेरित नहीं करता है जिसका कर्म, तो वह व्यक्ति जीवित ही मरा हुआ है, जीवित मरा हुआ है। जीवित का अर्थ है सांस लेता हुआ मरा है, मतलब वह मुर्दा है लेकिन सांस ले रहा है, और खतरनाक है, बल्कि सीधा मर गया होता तो अच्छा होता है ना। यदि मुर्दा जीवित सांस लेने लगे तो उसको ढोने वाले लोग भी छोड़कर भाग जाएंगे, ये भूत हो गया। अब बताइए, जिन लोगों का संबंध कृष्ण से नहीं है, उनकी सेवा के लिए जिनके कर्म नहीं है, उनका तो सब कुछ जीना ही बेकार है। जीवन अपि मृतो ही सह, सांस लेता हुआ भी जीवित होते हुए भी मृत ही स निश्चित मरा हुआ है। जिनहरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सौ समानते प्राणी। जीवत सौ बहुत खतरनाक होता है। यदि वास्तव में मृतक शरीर अकस्मात जी जाए तो वहां के सब लोग भाग जाएंगे कि हाय बाप ये महाभूत हो गया क्या करेगा। इस तरह के भूत नगर नगर में भरे हुए हैं। सब जगन्नाथ जी का भजन नहीं करते हैं, वही खान पान टीवी देखना सिनेमा देखना, ये सारे जीवित मुर्दे हैं, वास्तव में भूत हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है संसार की। जीव का जीवत्व क्या है? कृष्ण से प्रेम करना, यही जीवन का लक्षण है, यही जीव का स्वरूप है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति जो है वही अग्नित्व है, अग्नि का धर्म है प्राण है। जिस आग में दाहिका शक्ति न हो, जला न रहा हो, तो उसको आग कैसे कहेंगे? कभी नहीं कह सकते हैं आग। क्या कोई कहेगा? बेवकूफ आदमी भी ऐसा नहीं कह सकता है कि ये आग है। जो जला ही नहीं रहा, जिसमें आंच नहीं है, ताप नहीं है, तो उसको अग्नि नहीं कह सकते। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यदा, जीव का स्वरूप है कृष्ण से प्रेम करना, सेवा करना। तो जो व्यक्ति कुछ बहुत से कर्म कर रहा है, लेकिन उन कर्मों द्वारा, अपने धर्म द्वारा, वैराग द्वारा, यदि भगवान विष्णु की सेवा नहीं कर रहा है, न भगवान का नाम ले रहा है, न भगवान को देख रहा है, न सुन रहा है, न उनके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी को सूंघ रहा है, न उसका पैर भगवान के मंदिर के तरफ चलता है, न हाथ कोई सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसा शरीर, ऐसी चेतना वास्तव में निर्जीव का लक्षण है, मरी हुई चेतना है। जीवित वास्तव में वो है जिसके जीह पर भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह निश्चित है कि बड़े बड़े होटलों में सारे मुर्दे डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते रहते हैं। वायुयान में, ट्रेन में सब मरे हुए लोग सांस लेता हुआ घूम रहे हैं। ये सब प्रैक्टिकल कहा जाएगा तो इस तरह से व्यक्त किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में मुर्दे पढ़ा रहे हैं और मुर्दे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां भगवान का नाम नहीं है। जीवन नपी मृतो ही सब, बिल्कुल अपवित्र व्यर्थ जीवन है वास्तव में, जहां भगवान का नाम नहीं है, जहां भगवान का श्री विग्रह नहीं है, जहां विष्णु तीर्थपाद की सेवा नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। जिनके चरणों से गंगा जी निकलती हैं, ऐसे प्रभु का नाम लेंगे, प्रणाम करेंगे, तब अपनी सत्ता शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है, देह शुद्ध होता है। जो भगवान की आरती के बाद जल छिड़का जाता है तो उसे गंगा जी के समान पावन माना गया। बड़े अभिलाषा के साथ उस जल को मस्तक पर लेना चाहिए, बहुत बड़ी शुद्धि होती है। भगवान को अर्पित किया हुआ फूल या माला मिले तो उसे धारण करना चाहिए बहुत गौरव के साथ कि हमारे प्रभु का ये प्रसाद है, हमारी सत्ता को, हमारे जीवन को ये पवित्र करेगी माला। या कोई भी निर्माल्य जो भगवान पर चढ़ाया गया फिर बाद में उतारा गया, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा ये शरीर मरा हुआ है। भीतर पेट में नैवेद्य जाना चाहिए। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पेट में भगवान का प्रसाद जाता है और मस्तक पर भगवान का पुष्प चढ़ाता हो या सूंघता हो और भगवान का चरणोदक शरीर पर आ रहा है और जिह्वा पर भगवान का नाम है, ऐसा व्यक्ति धन्य है। क्यों नहीं पवित्र है वो? इस तरह की पवित्रता लेनी चाहिए। देवहूति परम उत्कृष्ट महिला है, भगवान के महत्व को पूरा पूरा समझ रही है, इसीलिए उसे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था आनंद प्राप्त करना, भगवान का चरण कमल प्राप्त करना, उस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं केवल खान पान और जननेन्द्रिय आदि के भोगों में रह गई, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। वास्तव में पतिदेव मैं जीवित ही मरी हुई हूं। हमारे जीवन में केवल एक अच्छी बात हुई है कि मैं आपके साथ रही हूं, बस इसके अलावा मेरा जीवन शून्य है, इस तरह से कह रही है। और आपके साथ मैं रही हूं इसलिए भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, मेरा उद्धार होना ही चाहिए। यहां पर सत्संग की महिमा व्यक्त की गई है। जैसे तैसे व्यक्ति को चाहिए कि वो साधुओं के संग में रहे, जैसे भी, या कोई लौकिक लाभ के लिए या और किसी भी उद्देश्य से साधु के साथ रहना चाहिए, तो उसके कारण भगवान में मन अभिनिष्ट हो जाता है। इस तरह देवहूति अपने विषय में शोक कर रही है, साहम भगवतो नूनम वंचिता माई आदृढ़ जत्वाम विमुक्ति दम प्राप्य न मुक्षेय बंधनाथ। और हे प्रिय, हे पतिदेव, इस संसार में यदि विचार किया जाए कौन व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है, तो पहला स्थान मेरा आएगा। मैं सबसे हतभाग्नी स्त्री हूं और सबसे बड़ी मूर्खा हूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे मुक्ति देने वाले पति को पा करके भी मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया। आप तो कृष्ण को दे सकते हैं, भगवान का धाम दे सकते हैं, संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया। जब तुम विमुक्तिदम प्राप्त न मुमुक्षय बंधनात्, जीव बहुत बड़ा बंधन में है, इस जड़ शरीर में उसको रहना पड़ता है और अभी जन्म मरण का दुख देखना पड़ता है, तो उसको कर्म बंधन से मुक्त करके भगवान के धाम में भेज देना ही सबसे बड़ा उपकार है। और मैं, मेरे पति ऐसे समर्थ हैं, जतम विमुक्ति दम, विमुक्ति ददाते इति विमुक्त, विमुक्ति द तम, जो विशेष मुक्ति भगवान का पार्षदत्व दे सकते हैं, इसको विमुक्ति कहते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है संसार बंधन से छूट जाना, लेकिन विमुक्ति का अर्थ है भगवान का पार्षद बन करके उनकी डायरेक्ट सेवा में जाना, इसको विमुक्ति कहते हैं। आप विमुक्ति देने में समर्थ हैं, विशिष्ट मुक्ति देने में समर्थ हैं, और ऐसे महान दानी, महान भगवत भक्त के पास रह करके मैंने मुक्त होने की इच्छा तक नहीं किया, इच्छा किया भोगों की। यह मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। भगवान की माया ने मुझे इस तरह से ग्रस्त कर लिया, इस तरह से मुझे ठग लिया, मैं वंचित रह गई। तो यदि माया देवी यहां पर किसी को बहुत भोग दें, उन्नत पद दें, स्वस्थ शरीर दें, स्वजन दें, सब कुछ, और यदि वह व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो समझना चाहिए कि माया ने उस पर कृपा नहीं किया है, बहिरंगा शक्ति ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। इस जगत की अध्यक्षा श्री दुर्गा जी हैं, भगवान की शक्ति हैं, इस जगत को चलाती हैं, रचती हैं, प्रलय करती हैं। तो किसी व्यक्ति को दुर्गा जी ने, माया शक्ति ने, मान लीजिए धन दिया है, उन्नत पद दिया है, स्वस्थ शरीर दिया और सब कुछ दिया, सारी सफलता दिया, लेकिन वह व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, तब वह माया शक्ति के द्वारा वंचित है, ठगा गया है, वास्तविक लाभ उसे नहीं मिला। इस तरह के वंचित लोगों में मेरा स्थान सबसे आगे है, और बेचारे वंचित हैं, भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो उनका उतना दोष क्या है, लेकिन मैं तो इतने महान भक्त के साथ रह करके भी माया नहीं रह गई, विषय भोगों की इच्छा की, इसलिए मैं बहुत हतभाग्नी स्त्री। परंतु यही मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपकी पत्नी हूं, आपके शरण में हूं, इसलिए मेरा उद्धार होना ही चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, भगवान की कथा मिलनी चाहिए। जब इस तरह से देवहूति शोक कर रही थी अपने विषय में, तब कर्दम जी उससे इस तरह बोले। अपने विषय में जो शोक कर रही थी देवहूति, वास्तव में वह इसके योग्य नहीं थी, जिसका पुत्र भगवान बनने वाले हैं और पति इतना बड़ा वैष्णव, पिता महान राजर्षि मनु महाराज, परम भागवत, वह स्त्री इस तरह से अपने विषय में खेद करे, शोक करे, ठीक बात नहीं थी। परंतु हम सबको सीखना चाहिए कि संसार में सबसे उत्कृष्ट भोग मिलने के बाद भी, इतने महान पति मिलने के बाद भी, पिता मिलने के बाद भी, देवहूति के जीवन में शोक ही छाया हुआ, अपने को सुखी अनुभव नहीं कर रही है। दुख का अनुभव कर रही है। तो जब इतनी महान महिला अपने विषय में इतना शोक कर रही है तो हम जैसे कीड़ों के पास है ही क्या इस संसार में, जो हम अपने को यह अनुभव करें कि हाँ हम ठीक हैं, सब तरह से क्या ठीक है। कोई समाचार पूछता है किसी से, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, क्या ओके ओके, कुछ नहीं, ओके नहीं, सब गड़बड़ी है वास्तव में। आज कटक से भक्त आए तो मैं पूछा कि सब ठीक है ना, तो कहते हैं कि क्या ठीक है, किस माने में आप पूछ रहे हैं ठीक है? क्या ठीक है? यह ठीक कुछ भी नहीं है, तो इस जड़ शरीर में जीव पड़ा हुआ है और दुख है जन्म लेने का, मरने का, सब का। और भगवान में यदि सहज प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रीति है, विषय भोग से वैराग्य है, तो वो ठीक है, लेकिन अभी बीमार चल रहा है। और बिल्कुल भगवान से मतलब नहीं है तो वो तो डेड हो गया, खत्म हो गया, तो मरा हुआ है। तो अपने को बीमारी की दशा से ऊपर उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग कुछ जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वो तो जी रहे हैं, अच्छा से जी रहे हैं। लेकिन इसको और रिफाइन करेंगे, और ज्यादा करेंगे, तो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। और जो बिल्कुल नहीं करते वो तो खत्म है, केवल सांस भर चल रही है। जीवन अति मृत्यु ही सह। शास्त्र में इस प्रकार की बातें बहुत बार कही गई है। तो अपने विषय में देवहूति इस तरह शोक कर रही थी, तब करदम जी उस परम सुंदर स्वभाव वाली अपनी पत्नी से कहते हैं, मा खिदो राजपुत्रित्वम आत्मानम प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदुरासम प्रपक्षते। प्रिय, हे अनिंदिते, तुम्हारा जीवन बिल्कुल निष्कलंक रहा है, तुमने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया है, तुम अपने विषय में क्यों इतनी चिंता कर रही हो? ये तुमने जो भोग भोगा है यह तुम्हारे लिए निंदा की बात नहीं है, अपने धर्म में रह करके ही तुमने भोग भोगा है, तो तुम अनिंदिता हो। हे राजपुत्री, हे राजकुमारी, तुम अपने विषय में शोक मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें भक्ति देने के लिए साक्षात भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे। यह इतना बड़ा आशीर्वाद है, तुम अपने विषय में शोक मत करो। इस तरह से दहुति रो रही थी तो उसको आश्वासन दिया जा रहा है। वास्तव में भगवत भक्ति करने का अधिकार सबको है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें कोई भी अधिकार भेद नहीं है, सबका समान अधिकार। और स्त्री चाहे किसी की पत्नी बन चुकी हो या कन्या हो, ये कोई भी स्त्री हो, कृष्ण से प्रेम करने का उसका स्वरूपगत अधिकार है। भगवान से प्रेम करने के बाद ही किसी के साथ संबंध किया जा सकता है, मुख्य संबंध भगवान का है। जैसे धरती पर चलने वाले जितने भी वाहन हैं, तो उनका मुख्य आधार है धरती, भूमि। वाहन का साइज अलग हो सकता है, जैसे ट्रक और रिक्शा में अंतर है, और जीप है, कार है, बैलगाड़ी है, कुछ भी है, उनका साइज, उनका आकार या भार ढोने की क्षमता में भी बहुत अंतर है, स्पीड में अंतर है। और वे तेल खाते हैं तो तेल खाने में भी उनका अंतर होता है, लेकिन सबका एक कॉमन आधार है कि वो पृथ्वी पर ही चलेंगे, चाहे बस हो, ट्रक हो, जीप हो, कार हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उनका आधार है पृथ्वी, पृथ्वी को छोड़ करके नहीं चल सकते। इसी तरह से कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री है, पुरुष है, कोई दुकान कर रहा है, सौदा बेच रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, या कोई कुछ भी करे, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, जो कुछ भी है, ये सब भेद रहेगा। लेकिन जैसे विविध प्रकार के वाहनों का जो धरती पर चलने वाले हैं, आकार भेद, क्षमता भेद, सब कुछ भेद है, लेकिन उनका कॉमन आश्रय है धरती, भूमि। इसी तरह से और सारी विविधता होते हुए भी कॉमन आधार होना चाहिए विष्णु, कृष्ण का आश्रय होना चाहिए, बस सब ठीक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं गृहस्थ सन्यासी हो जाए और सन्यासी गृहस्थ हो जाए, ब्रह्मचारी अपने धर्म को छोड़ दे और करे, तो कुछ नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के शरण में हो जाना है। जैसे वाहनों के लिए धरती का आश्रय जरूरी है, उस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए कृष्ण का आश्रय जरूरी है। और कृष्ण के आश्रय का इस युग में ये कहीं अर्थ है कि कृष्ण का नाम जपना चाहिए, यही आश्रय है। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है वह सब तरह से ठीक है, और उसे कलयुग प्रभावित नहीं कर सकता है, और दोषों से वो प्रभावित नहीं हो सकता है, भगवान का नाम उसकी रक्षा कर लेगा। तो कृष्ण का आश्रय लेने का यह अर्थ है कि भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है जैसे तैसे, जहां भी, घर में, बाहर, स्कूल, कॉलेज या बिजनेस फील्ड, ऑफिस आदि, जहां भी भगवान का नाम ले, तो भगवान की उस पर कृपा होती है, भगवान उसको अपना मानते हैं और उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, किसी प्रकार का अभाव नहीं आ सकता है, वो सुखी रहेगा, और परलोक में तो भगवान का धाम रखा हुआ है। इस तरह भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे देवहूति रो रो करके अपने पति से विनय कर रही है, हमको कथा सुनाइए, हमको ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता पुत्र दीजिए जिसे मैं भगवान कृष्ण के बारे में सुन सकूं। तो जीवन में यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के विषय में सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। तो देवहूति ने इस तरह से जब अपने पति से प्रार्थना किया तो कर्दम जी उसे आश्वासन दे रहे हैं और भगवान गर्भ में आएंगे देवहूति के, ये कथा कल कही जाएगी। हरे कृष्ण।